भक्तिमय विभिन्न गतिविधियों में साधक जन लगने का प्रयत्न करते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का यत्न करते रहते हैं, करना भी चाहिए। परंतु आज जिस अति 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 महत्वपूर्ण सूत्र पर विवेचन किया जाएगा, उसको समझे बिना, उसको जीवन में लगाए बिना, चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना कर लो, तब भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आज के सूत्र को समझे बिना, उसे जीवन में लगाए बिना, थोड़ा बहुत हरि नाम लेना और इधर उधर जानने की बात नहीं है, खोपड़ी के बल खड़े होकर 24 घंटे साधना कर लें तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आज का सूत्र समझे बिना, आज का सूत्र उस दर्पण का कार्य करेगा जो सब कुछ खोल देगा। हम सब कोई देख पाएंगे, हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये जीवन का हर पहलू खोल देगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण सत्र है, इस सत्र को समझने के लिए बहुत कृपा की आवश्यकता है। तो इस सत्र सुनने से पहले ही हम ये चाहते हैं कि सब लोग हृदय से ठाकुर जी सामने विराजमान हैं, इनसे हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रार्थना करें कि आज का सत्र हमारे हृदय में स्थापित हो जाए, नहीं तो आप स्थापित नहीं होंगे। प्रार्थना करें हृदय से। मोसम पतित प्रभु, दया करो मुझे, तुमा बिना के दया जगत संसार। मधुर रस के उपासकों को समझना चाहिए कि जो वृंदावन है बहुत विचित्र देश है, नित्य ब्रज ये बहुत विलक्षण देश है, ये अतिशय ममता का देश है, अतिशय ममता का। चलो चलो चलिए निज देश, यहां जाना है तो अतिशय ममता होनी पड़ेगी, नहीं तो किसी को प्रवेश नहीं है, ब्रह्मा शंकर को नहीं प्रवेश। अतिशय ममता, विलक्षण देश है, राधा रानी का सुख और मेरा सुख एक एक ही है, अलग नहीं है। क्या अलग हो सकता है? राधा रानी का सुख और मेरा सुख क्या अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मंजरी क्या है? राधा रानी की अभिन्न देह, अभिन्न प्राण, कोई भेद नहीं है। देखिए राधा रानी का स्वरूप समझें, राधा रानी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, उनको आह्लाद पहुंचाती है, उनको आनंद पहुंचाती है। अच्छा तो मंजरियां और गोपियां क्या है, क्या है सखियां? ये उन्हीं आह्लाद पहुंचाने वाली राधा रानी की अंतरंग वृत्तियों का मूर्तिमान स्वरूप है। राधा रानी आनंद पहुंचाती है श्री कृष्ण को, उन्हीं की अंतरंग वृत्तियों का मूर्तिमान कर दिया है, एक एक वृत्ति को, एक एक मूड को, एक एक भाव को, तो वो मंजरियां सखियां हो जाती हैं। वो उन्हीं की वृत्ति हैं, उन्हीं के चरण के नख के प्रकाश से तो उनका प्रादुर्भाव होता है मंजरियों का। तो सभी मंजरियां राधा रानी के सुख में सुखी रहती हैं, तो हमें किसके सुख में रहना है? सुख में सुखी रहना है, बताइए किसके सुख में सुखी रहना है? हमारे राधा रानी का सुख अलग और हमारा सुख अलग, ये कोई उपासना है? ये कोई उपासक का स्वरूप है? राधा रानी का सुख अलग, मेरा सुख अलग, राधा रानी का विलास अलग, मेरा अपना घर का लोकल विलास अलग, ये कोई उपासना है? ये कोई उपासक है? सिद्धस्य लक्षणम यस्य साधनम साधकस्य च, माने जो सिद्धों का लक्षण है वही साधक की साधना है। तो मंजरियों का क्या लक्षण है? नित्य लक्षण, वो राधा रानी के सुख में सुखी। तो हमारा नित्य लक्षण क्या होना चाहिए? राधा रानी के सुख में सुखी। प्रतिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राधा रानी के सुख में सुखी। अगर हम राधा रानी के सुख में सुखी नहीं है तो हम साधक किस बात के? किस बात के साधक? राधा रानी मुख कमल की चंद के सौंदर्य का तो क्या वर्णन करें। राधा रानी का जो मादन आंखे रस की जो सैकड़ों हिल्लोरे हैं वो उनके नयन के कोरों में रहती हैं। मादन आंखे रस की सैकड़ों हिल्लोरे, सैकड़ों, इतना सौंदर्यशाली, और उनके एक लव मात्र की भ्रू भंगिमा पर श्री कृष्ण आनंद मूर्छा को प्राप्त हो जाते। ये है मेरी राधा रानी। तो वहां अगर जाना है तो स्वसुख वांछा से पूर्णता रहित होना पड़ेगा। कब? हर्षण, मंजरी हर्षण स्वसुख वांछा से पूर्णता रहित है। स्वसुख, मेरा सुख, ये ब्रजधाम में स्वसुख का कोई अनुसंधान नहीं है। स्वसुख शब्द ही नहीं है वहां पे। जिसके बिना हम यहां जीते नहीं है वहां शब्द ही नहीं है। वो जीवनी तो छोड़ो, वहां जाना है तो उनके जैसा होना पड़ेगा। प्रतिक्षण राधा रानी के सुख में सुखी, तभी तो वो अपने होए, नहीं तो अपने काहे के। हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है तो उनके दुख में दुखी, और थोड़ा सा हंस दे तो उनके सुख में सुखी। और राधा रानी का सुख और दुख क्या है उसका हमें इल्म ही नहीं है। तो हम उपासक किस बात के हैं? ये कोई उपासना है? उनका सुख अलग और हमारे 24 घंटे का सुख अलग। अपने कैसे भय हो, हमारे कैसे अपने हुए? अपने का तो तब माना ना जब उनके सुख में हम सुखी और उन्हीं के दुख में दुखी। हाँ, भगवान दुखी भी होते हैं दिव्य लीला में, आनंद स्वरूप, दिव्य आनंद और दिव्य प्रकार से दुखी होना, उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी, यही तो भक्त है। ये थोड़ा उनकी चाह कुछ और हमारी चाह कुछ और, ये कोई भक्त हुआ? हमारी चाह कुछ और है। ये जो ब्रज भक्ति है इसमें जो सेव्य का सुख है वही सेवक का सुख है। जो हमारी सेव्य कौन है? राधा रानी। जो उनका सुख है वही हमारा सुख है। सेवे सेवक हैं दो पर सुख एक है। वो दो नहीं है, वो है क्या? राधा रानी की अंतर वृत्तियां ही तो हैं, और क्या है? उन्हीं की वृत्तियां मूर्तिमान होके हम अगर मंजरी हैं, अगर हमें आनंद आस्वादन करना है, यहीं पे रहते हुए लीला आस्वादन करना है, नाम आस्वादन करना है, अश्रुपुलक हम चाहते हैं हमें भी हो उत्पन्न, तो स्वसुख वांछा से पूर्णतः रहित होना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो प्रवेश ही नहीं है ब्रज में। प्रतिक्षण सावधान रहना पड़ेगा। मेरा ये जो कार्य है, ये जो मेरी क्रिया है, ये उनके प्रसन्नता के लिए है कि ये मेरी प्रसन्नता के लिए है? किनकी प्रसन्नता के लिए है? ये प्रतिक्षण सावधान रहना पड़ेगा। अगर उनके सुख में तुम सुखी नहीं हुए, उनके तो सुख से तुम्हें हृदय में शीतलता प्राप्त हुई, तो तुम भक्त काहे के, तुम मंजरी काहे के? फिर वो विलस रहे हैं, अनंत मंजरी को हो रहा है, मंजरी विलस नहीं रही है, वो तो इतने दूर विलस रहे हैं, मंजरी ये उद्यान में फूल चयन कर रही है, डोले में डाल रही है, और वहीं पे इतना तादात्म्य कि डलिया छूट जाती है, आनंद के मूर्छा आ जाती है मंजरी तक को, इतना तादात्म्य। राधा रानी के गर्व से गर्वीली हैं, स्वसुख वासना से रहित हैं। राधा रानी की तत्सुख राधा ने की वासना वांछा में भरी पड़ी है, अनकंट्रोलेबल वासना होती है राधा रानी को सुख पहुंचाने की मंजरी की, अनकंट्रोलेबल प्रतिक्षण। हम भीतर देखें क्या हमारी भी यही वांछा है, अनकंट्रोलेबल वासना राधा रानी को सुख पहुंचाने की प्रतिक्षण। और कोई जीवन नहीं है, कोई अल्टरनेट जीवन नहीं, नो अदर लाइफ, नो अल्टरनेट लाइफ। अब एक बात बताएं, यदि अपने को ही सुख पहुंचाना है, मैं ये जो शरीर और इसकी परिधि, मैं और मेरे जो तीन चार लोग जो होते हैं जिसको परिवार की संज्ञा दी जाती है, तो यदि इसी को सुख पहुंचाना है तो हाउ विल यू गो टू गोलोक, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई विल यू गो टू गोलोक। गोलोक कैसे जाओगे, संभव नहीं है स्वसुख वासना का तो स्थान ही नहीं है वहां पे, और व्हाई विल यू गो, यहीं पे ही रमण करने में सुखी है हम। राधा रानी का विलास अलग है, अपना विलास अलग है, हम यहीं पे परमानंद लग रहा है, यही आनंद है, तो व्हाई विल यू गो टू गोलोक, हाउ वुड यू गो टू गोलोक। प्रत्येक क्षण की गतिविधि मन की, वाणी की, देह की देखनी चाहिए, क्या ये उनकी प्रसन्नता के लिए है, उनकी प्रसन्नता के लिए ये देखना चाहिए प्रत्येक क्षण। राधा रानी की मादन आखे रस के अनेक हिलोरे जो है राधा रानी के नैनों के कोरों में बसी हुई हैं, तो जरा सा लव मात्र भ्रू भंगिमा पर श्री कृष्ण को आनंद मूर्छा हो जाती है, मंजी कि ये उसका हृदय सिराता है, वो राधा रानी गर्व से गर्वीली रहती है, हृदय सिराता है उसका। क्या सखी का भी हृदय सिराता है? नहीं, मंजरी का। ये भावना से हमारा हृदय हमेशा गंध से भरा नहीं रहेगा, तुम उपासक किस बात की, सबसे गंदी सबसे मलिन अगर कोई चीज है इस संसार में वो है स्वसुख वासना, स्वसुख वासना, इससे गंदी इससे मलिन इससे दुर्गंधमय चीज कोई नहीं, स्वसुख वासना, ये आपने इसको सुखी करना है, ये छोटी सी परिधि में सुख को बांध के रख दिया, इसके संबंध में इसको थोड़ा ये कर दो, हो गया इसको सुख, कितना निचला कितना गिरा हुआ स्तर है। आपने प्रीति वांछा तार नाम काम, काम केशनेर प्रीति वांछा तार नाम प्रेम, इच्छा तो कर, इच्छा ही तो कर सकता है जीव, और तो कुछ नहीं कर सकता। तो इच्छा जब कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्नता पहुंचा, कृष्ण मतलब राधा कृष्ण जोगल सरकार के इंद्रियों को प्रसन्नता पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे कहते हैं प्रेम, और यही जब इसको इस देह को इसको कहते हैं काम। तो ऐसे रह के हम अनंत जन्म कोई भी साधना कर लें, कोई भी भक्ति कर लें, तो प्राप्त कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी चीजें जो हैं वो किस चीज से बनी हुई हैं, स्वसुख वासना से। जबकि होना क्या चाहिए, तत्सुख वासना, तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी उनके दुख में दुखी। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा जब हम केवल उनको अपना मानेंगे, राधा रानी को, ये ही मेरी है। जब मैंने यहां दीक्षा ले ली गौड़िया समाज में तो मेरा कोई रहा ही नहीं, मेरा सर्वस्व कौन हो गया, राधा रानी। दीक्षा लेना क्या बात है, तुमने उनको अपना माना, तुम उन्हें भोग लगा रहे हो तो उन्होंने तो तुम्हारे को अपना माना ना, तभी उनको भोग इस अवस्था में भोग लगा रहे हो राधा रानी को, तो कल्पना तो करके देखो कितनी बड़ी कृपा है। इस अवस्था में वो हमारा भोग स्वीकार कर रही हैं, तो उन्होंने तो अपना मान लिया, अब हम उन्हें अपना माने, केवल अपना, हम जब चाहे भोग लगाते हैं कि नहीं, अपना माना हुआ अपने को कभी भी भोग लगाओ, तो क्या हमने भी उन्हें अपना माना है क्या। राधा रानी में जब हम अपनी सारी ममता डाल देंगे तो हम हृदय से बोले माई प्रिंसेस, क्या वही भावना आएगी, आनी चाहिए, सभी मंजरियों को यही भावना आती है, माई राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी और किसी की नहीं, केवल मेरी, केवल मेरी राधा रानी। और जैसे छोटे बच्चे को कोई लहंगा डाल दिया, वो दिखा रहे हैं ये देखो बच्चे माता पिता को, तो सिर हृदय शीतल हो रहा है, तो राधा रानी रोज इतने सुंदर सुदन हीरे मोतियों के जड़ित लहंगा डाल रही हैं। कभी हमारे को होता है कि राजा रानी ऐसे कर मेरा हृदय सिर आ गया, मैं तो शीतल हो गया, मेरा आज का दिन बन गया। राजा रानी यूं लहंगा करके दिखाया, हम बोले ना श्रृंगार कर दिया, डीटी पर शिप दिखाना स्वामी ने, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। मेरी राजा रानी माई मेरी, जब तक मेरा नहीं मानेंगे जितना मर्जी जप कर लें, जो मर्जी कर लें। हालांकि आप सब लोग यहाँ पे ज्यादातर लोग 64 माला रोज करते हो, मैं मालूम है ज्यादातर लोग 64 माला करते हो, दो दो घंटे पुस्तक भी पढ़ते हो, वैष्णव सेवा भी करते हो, खूब अच्छे से भक्ति कर रहे हो, पर लेकिन उनकी प्रसन्नता प्रतिक्षण का ध्येय है कि नहीं है? प्रतिक्षण का सोए किस लिए? उनके लिए। जगे किस लिए? उनके लिए। खाया किस लिए? उनके लिए। ये प्रतिक्षण का ध्येय होना चाहिए। राधा रानी एक बात समझ लो अच्छे से, जब तक अपने लिए हंसते और रोते रहोगे तो राधा रानी तो कभी प्राप्त नहीं होगी, कभी प्राप्त नहीं। अपने लिए हंस रो रहे हैं दिन रात, अपने लिए रो रहे हैं, हंस रहे हैं, उसने मुझे ये कह दिया और मैं इतना कुछ मिल गया तो खुश, ये तो भक्त का लक्षण ही नहीं है। अपने लिए हंस रो रहे हैं दिन रात जन्मों जन्मों से। श्री कृष्ण मंजरियों का जब मुख देख लेते हैं तो क्या बोलते हैं? मैंने आपका मुख देख लिया मंजरियों, तो मुझे राधा रानी का मुख देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुख पर स्पष्ट उनका भाव प्रकट है, स्पष्ट। अपने लिए हंस रोती नहीं है मंजरी, कभी भी नहीं अपने लिए हंसती या रोती। किसके लिए? राधा रानी के। कुंज में राधा रानी विरह में है, तड़प रही है, कृष्ण को खोजने के लिए जाती हैं, तो रास्ते में कुंज पथ पे ही विलंब से कृष्ण आ रहे हैं जान बूझ के रस माधुरी का वर्धन करने के लिए। तो मंजरी को जैसे ही देखते हैं तो राधा रानी की विरह की जो स्थिति है वो अपने अंतस में वहन करके घूम रही हैं। तो श्री कृष्ण जैसे ही देखते हैं कहते हैं उनको राधा रानी की दुख की अवस्था समझ आ जाती है। तो श्री कृष्ण कितनी बड़ी सेवा है अपने अंतस में राधा रानी को वहन करना, ये है मंजरी। क्या हम भी ऐसे ही वहन करते हैं दिन भर में कि इस समय राधा रानी की ये स्थिति है, इस समय राधा रानी की ऐसी स्थिति है, क्या हम ऐसे वहन करते हैं? क्या नहीं करना चाहिए? हम कौन सी उपासना कर रहे हैं? हम अपने आप से पूछें। रोते हैं राधा रानी के लिए, हमें महसूस होता है कि वो कितनी दुखी है, दिन में एक बार भी महसूस होता है? वो कितनी कितने कष्टों से कृष्ण से मिलने जाती है, कितने कष्टों से, हमें एक बार भी होता है कि मैं उनके उनकी मदद करूं? अपने बच्चे को 10 बार हम दूध पिलाना खाना खिलाना उसमें चूकते नहीं एक बार में, पर क्या हमें कुछ भी होता है राधा रानी को कुछ भी हो रहा हो? मध्यान्ह लीला होने से पूर्व राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार करके राधा रानी को एक हीरे मणि से जड़ित मिरर शीशा दिखाया जाता है और राधा रानी देखती हैं, हमारी तरह नहीं, अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, नहीं, वो देखती हैं श्री कृष्ण इस सुंदरता का भोग करेंगे तो उन्हें कितना आनंद मिलेगा। वो तड़पना शुरू कर देती, अनकंट्रोलेबल डिजायर वासना हो जाती है श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की, तो चलती रहती हैं अपने महल में, चले जा रही हैं। किस लिए चल रही हैं? उनसे कंट्रोल तुलसी मंजरी को भेजा हुआ है, किस लिए? श्री कृष्ण को माला पहनाने के लिए। माला राधा रानी खुद गूंथी है हमारे साथ बैठ के, आपकी सेवा माला गूंथने की, आपकी गुरु मंजरी की सेवा साथ बैठ के गूंथो और फिर उनको माला जानो, ये सेवा करो मध्यान्ह से पहले माला साथ में बैठ के गूंथ रहे हो। अच्छा गूंथ ली तो वो माला पहनाने कौन गई है? तुलसी मंजरी। इतनी देर हो गई आई ही नहीं, उनका रोना बंद नहीं हो रहा राधा रानी का, दुख के मारे चले जा रही है, तो आप उस समय क्या करोगे? यूं करके सुनोगे कितनी अच्छी लीला सुनाई जा रही है? नहीं, दुख के मारे आप कहां रह गई, आपके मन में एक ही बात चलेगी सिर्फ, तुलसी मंजरी कहां रह गई, तुलसी कहां रह गई, कहां, देखते रहोगे ऊपर नीचे आगे पीछे बार बार, तुलसी आई नहीं, तुलसी आई नहीं, तुलसी आई नहीं, वो दूर से तुलसी दिखेगी, तुलसी का मुख भी तो दिख रहा है ना, खुशी वाला मुख है, जो सक्सेस सफल होके आया होता है उसका मुख अलग ही होता है, तो खुश हो रहा, हाँ कार्य करने गई है, अब तय होके आया है, अब मेरे स्वामी को कितनी शांति मिलेगी, मुझे कितनी शांति मिलेगी इससे। फिर तुलसी मंजरी आती है, ललिता सखी को माला देती है प्रसादी श्री कृष्ण की, पुष्प देती है, फिर वो पहनाती है राधा रानी को। राधा रानी को जैसे ही पहनाती है माला, तो राधा रानी के नयन यहां से यहां इतने बड़े हो जाते हैं, कान तक पहुंच जाते हैं, पुलक छा जाता है और अदमनीय है, मतलब दमन नहीं करी जा सकती वो इच्छा कि मैं श्री कृष्ण को अभी सुख पहुंचाऊं, बिल्कुल अभी एकदम अभी सुख पहुंचाऊं। इतना चिंतन करते 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 राधा रानी स्तंभ भाव को प्राप्त हो जाती है, स्तंभित हो जाती है, एकदम जड़वत, हिल नहीं सकती है। आप क्या करोगे, ऐसे करोगे उस समय क्या करोगे, आप भी डरोगे, कांपोगे, मंजरी कांपेगी नहीं, आप कांपोगे नहीं, क्या करोगे, इनको मूर्छा से हटाऊं। कई बार राजा रानी जो होती हैं, इतनी ज्यादा आनंद सूरत रंग में भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं से आनंद पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण को इतनी ज्यादा विमत हो जाती है कि वो मूर्छित हो जाती है। फिर मंजरी किसी तरह उनको जगाती हैं कि सेवा के योग्य, फिर राधा रानी मत रहती हैं श्री कृष्ण को सुखी करने में, और श्री कृष्ण मत रहते हैं, मत समझती हो, पागल पागल राधा रानी को सुखी करने के लिए, राधा रानी पागल रहती हैं, मत रहती हैं श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए, मंजरी युगल को सुखी करने के लिए मत रहती हैं, विमत रहती हैं, पागल, अनकंट्रोलेबल डिजायर होता है युगल को सुख करने का, अनकंट्रोलेबल। वहां स्वसुख का कोई स्थान नहीं है, स्वसुख सबसे हीन है, अपना स्वार्थ अपने लिए, वहां अपने लिए कोई कार्य नहीं होता। श्री कृष्ण का तो सिद्धांत ही है, मद भक्ताना विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, मैं अपने भक्तों के विनोद के लिए, आनंद के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता हूं। श्री कृष्ण का स्वरूप ही है कि राधा रानी को आनंद पहुंचाना, स्वरूप है उनका, काम प्रवेश नहीं कर सकता, काम तो उनकी परछाई को देख के करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, श्री कृष्ण की परछाई को देख के काम प्रवेश करेगा वहां, जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम वहां कहां काम। राधा रानी का स्वरूप है श्री कृष्ण को निरंतर सुख पहुंचाना, कृष्ण का स्वरूप है राधा रानी को निरंतर सुख पहुंचाना, निरंतर विमत रहते हैं। और हम मंजरियों क्या होना चाहिए, सिद्धस्य लक्षणम यस्यात् साधनाम साधकस्य च, हमारा साधना क्या, हर समय यही सोचना कि राधा रानी को कैसे सुख पहुंचाऊं, दिन रात। श्री कृष्ण कहते हैं चेतन चरितम में तो बताया गया कृष्णदास कविराज ने, भक्तेर प्रेम चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार, भक्तों के प्रेम चेष्टा देख के कृष्ण चमत्कृत हो जाते हैं। ये नहीं बोल रहे श्री कृष्ण कि भक्तों की पारिवारिक चेष्टाओं को या कामनाओं को देख के चमत्कृत होते हैं, भक्तेर पारिवारिक चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार ये नहीं बोला जा रहा, या भक्तेर स्वसुख वासना देखी कृष्णेर चमत्कार ये नहीं बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा है, भक्तेर प्रेम चेष्टा। देखो बड़ी सीधा सा गणित है, हम आत्मा है हाँ, हमें सुख चाहिए हाँ, वो कौन है, भगवान हाँ, वो कैसे प्राप्त होंगे, प्रेम से हाँ ठीक, प्रेम कैसा होना चाहिए, स्वसुख वासना रहित। अब कोई प्रश्न है, इसके बाद हो गया सबको एक मिनट में सब स्पष्ट, प्रेम स्वसुख वासना रहित होना चाहिए प्रतिक्षण, अगर हम प्रतिक्षण का ये लक्ष्य ही नहीं कर रहे कि मुझे स्वसुख वासना रहित होके उनकी तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी होना है, वो उनके आनंद में मुझे शीतल होना है, मेरा हृदय सिराए उनको देख के, युगल मुख चंद्रमा की चकोरी सखी मंजरी, युगल मुख चंद्रमा की चकोरी भक्त पान करती रहती है, तृप्त नहीं होती, इतना आनंद। अरे आप ये सोचो किस आनंद के पीछे हमें जाना चाहिए और कहां पे हम डोल रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं आके प्रार्थना करते हैं मंजरी से, मेरा अंग संग कर लो, प्रार्थिताम अभी कृष्ण है ना तत्परांगमुखी, कृष्ण प्रार्थिताम अभी कृष्ण है ना, कृष्ण स्वयं प्रार्थना करें तब भी तथो भोग परांगमुखी, वो भोग वो तब कृष्ण की प्रार्थना कृष्ण का अंग संग भी स्वीकार नहीं करती, जिसके लिए लक्ष्मी तपस्या कर रही है कि मुझे कृष्ण का अंग संग प्राप्त हो जाए, वो अंग संग मंजरियां हे समझती हैं, हे सोचिए कितना स्वसुखवासना से रहित होंगी मंजरी। कृष्ण का अंग संग प्राप्त हो जाए, ऐसी कौन स्त्री है जो लट्टू ना हो जाए श्री कृष्ण में? कौन है लक्ष्मी अपना पतिव्रता धर्म त्याग देती हैं कृष्ण की वेणु सुनने से? ये है श्री कृष्ण, उसका उनका संग त्याग देती है मंजरी। ये है मंजरी, ये हमें होना है। ए इधर में दृढ़ता होनी चाहिए, सामने कृष्ण कह रहे नहीं करूंगी अंग संग, है ये दृढ़ता? तो मंजरी कैसे बनोगे? नहीं है तो सामने खड़े हैं कृष्ण। बिल्कुल स्वसुख वासना से रहे, बिल्कुल कोई वासना नहीं अपने लिए, अनकंट्रोलेबल डिजायर किस चीज का? युगल को सुख पहुंचाने का, और कुछ भी नहीं। अगर भगवान हमसे एक ही बोले कि प्रात वरदान मांगो तो हम तो हमारे परिवार का ये हो जाए वो, ये सब नहीं। एक ही वरदान मांगे, हे भगवान मैं स्वसुख वासना से रहित हो जाऊं और राधा रानी के सुख में सुखी हो जाऊं, एक वरदान मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो स्वसुख वासना से रहित हो जाओ और राधा रानी के सुख में सुखी हो जाएं तो आनंद के सारे स्रोत खुल जाएंगे, सारे झरने फूट उठेंगे, कृपा के आनंद के सारे झरने फूट उठेंगे। और जो स्वसुख वासना से रहित नहीं होंगे, हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। भक्ति करते हैं बच्चे तो घर वाले सोचते हैं, बताते हैं और रुको, ये तो जी बहुत बड़ा भक्त है राधा कृष्ण का, ये तो बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा भक्त है। उनसे बोलो भीतरी स्थिति अब क्या बताएं, कि वो ये सोचते हैं ये राधा कृष्ण दिन रात उनके सुख पहुंचाने में तत्पर हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो भी कितने बुलेखे हैं और हम भी कितने बुलेखे हैं। बहुत बड़ा भक्त का मतलब दिन रात उनके सुख में सुखे, दिन रात सुबह शाम रात दोपहर हर क्रिया से हर चेष्टा से अपने लिए इतना सभी हंसना भी नहीं। ये है मंजरी और ये हमारी साधना है। और हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे हम जाने कि कितने करोड़ों करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं, कितने लाखों करोड़ों अरबों जन्म ले चुके हैं, हम स्वसुख वासना के अंदर ही डूबे हुए हैं। अब इसी को सुखी करना शरीर को, तो हमारी क्या स्थिति है? अब देख लें अपने, हम अपनी स्थिति देखें तो जो करोड़ों जन्मों बाद ये स्थिति है, तो अब जो भी हम करते रहें क्या कोई बदल जाएगी? जन्म मृत्यु पार कर जाएंगे, अरबों जन्म में नहीं कर पाए स्वसुख वासना के साथ होते हुए तो क्या पार कर जाएंगे? समस्त अपराध, समस्त अनर्थ, समस्त गलत कार्यों का एक ही मूल है, क्या है? स्वसुख वासना। समस्त अपराधों का, समस्त अनर्थों का, समस्त गलत कार्यों का एक ही मूल है, स्व सुख वासना। भक्ति में आके अगर कोई सुखी नहीं है तो उसका केवल एक कारण था, एक कारण है और एक कारण रहेगा, वो क्या है? स्व सुख वासना। स्व सुख वासना ऐसा दीवार है जो हम खुद खड़ी करते हैं, जिससे भक्ति का जो प्रेम समुद्र है, आनंद समुद्र है, वो हमारे को छू नहीं पाता। हम खुद खड़ा कर रहे हैं, ये एकमात्र दीवार प्रेम प्राप्त करने में, आनंद प्राप्त करने में, वो है हमारी स्वसुख वासना। जब तक इसको नहीं हटाएंगे तब तक कुछ भी कर लें भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। राधा रानी का जो सुख है, उनको सुखी पहुंचा के सुख होना, ये हमारा एवर अवेटेड हैप्पीनेस होनी चाहिए। हमेशा इसका हर क्षण इसी का इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हो हर क्षण, एवर अवेटेड हैप्पीनेस प्रत्येक क्षण का यही गोल, यही लक्ष्य होना चाहिए कि उनको सुख पहुंचा के मैं सुखी हूं। हम अपने आप को देखें और जानें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, अपने आप को देखें और जाने कि जब तक हम ये स्वसुख वासना से रहित नहीं होंगे, जीवन क्या रहेगा? स्ट्रगल रहेगा हमेशा और दुख में रहेगा। देखो जैसे ही इच्छा आई तो एक जलन शुरू हो जाएगी, और जलन को मिटाने के लिए हम उस वासना को पूरी करेंगे, वो जलन मिटी उसके बाद भी उसी स्थिति में रहेंगे। कोई भेद नहीं है। और जो हम इतनी स्वशुभ वासना है तो देखो उससे क्या प्राप्त होगा, हम आत्मा का क्या साइज है, एक बाल के कण का 10,000वां हिस्सा, इतना छोटा कि ना तो ये कोई वस्त्र डाल सकता है ना कुछ खा सकता है कभी भी। इसी चक्कर में हम डोल रहे हैं, कोई अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना दूं और कुछ खिला पिला दूं, यही है और तो कुछ नहीं कर रहे, ना हम खा सकते हैं ना कुछ पहन सकते। तो स्वसुख वासना जो है वो केवल एक ही चीज है, अपनी मूर्खता का परिचय। प्रेम प्राप्त करने के लिए दो रोटी मिल जाए और कुछ जगह रहने की मिल जाए, इससे ज्यादा तो प्रेम प्राप्त करने के किसी को भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, आपके लिए किसी को भी नहीं चाहिए, दो रोटी और कुछ जगह रहने की, इससे ज्यादा कोई भी इच्छा है तो वो अपनी मूर्खता का परिचय है। और कहे कोई कहे मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मतलब मेरी बहुत सारी स्वसुख वासनाएं हैं, तो वो मूर्खता का विस्तृत परिचय है, विस्तृत परिचय हमारी मूर्खता का। देखो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, इतने भक्ति में आके भी मैं जो का क्यों हूं, वैसे एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज रखी हुई है वैसे के वैसे, 10 साल हो गए वही स्वसुख वासना में, 24 घंटे का पूरे 24 घंटे 24 out of 24 स्वसुख वासना में, तो भगवत प्राप्ति होगी। हम सोचे चतुराई से हम ये इच्छाएं पूरी करने, चतुराई से हम सोचे हम बहुत चतुर हैं, बच्चे तुम्हारी चतुराई की वजह से 84 लाख योनियों में घूम रहे हो तुम अब तक, या अपनी चतुराई की वजह से ही, या अपनी चतुराई छोड़ के भोले बालक बन जाओ तो राजा रानी कृपा प्राप्त हो जाएगी, चतुराई को चतुर व्यक्ति को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। हाँ 84 लाख योनियां तो बारंबार प्राप्त हुई हैं और होती ही रहेंगी। हम स्वयं को देखें कि हमारी क्या क्या, ये तो हमने बताया कि स्वसुख वासना क्या होती है, अब हम प्रत्येक अपने दिन भर की क्रियाओं को थोड़ा प्रकाश डालें कि वो कैसी होती है। क्या बोलते हैं वो, बहुत दिनों से पकौड़े ही नहीं बनाए, जरा पकौड़े बना दो ठाकुर जी को फटाफट भोग लगा दो, ये कौन सी भक्तों की सभ्यता है, बहुत दिनों से नहीं बनाए किसको खाने हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए है। एक मैं डेविल, इधर डेविल इज हेयर, साहब आए हैं काम करके, पहले स्टार्टर चाहिए साहब को शाम को, उसके बाद विस्तृत एक डिनर चाहिए, होगा साहब को मीठा भी चाहिए, महाराजा भी राज हैं और ठाकुर जी भी हैं, पर ये महा ठाकुर हैं, शर्म भी नहीं आती है ऐसा जीवन जीने में हमें। वो क्या बोलते हैं फटाफट भोग लगा दो, ये फटाफट भोग क्या होता है, किसको तुम्हें भोग सीधा ही खा लो, ये कोई भोग लगाना कोई क्रिया नहीं है, अपनी भोग वासना को तृप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं है भोग लगाना, ये कोई क्रिया है कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की। भक्तों का केवल एक आभूषण होता है, क्या, कंठी माला, कंठी माला एकमात्र आभूषण है भक्तों का, और इसको भी हम स्वसुख वासना में यूज कितने लोग करते हैं, हमने देखा है वो कोई भी चीज आती है बाहर की वो छू के खाना शुरू, ये जो कितनी कितनी तत्सुख तत्सुख सुखित्व में उनके सुख में सुखी, ये सुख में सुखी हो, अरे सोचो कहां जा रहे हो क्या कर रहे हो। पशु तो ये जान नहीं सकते कि स्वसुख वासना से रहित होना है, और तुम भी अगर नहीं ये जान रहे, जानने के बाद भी नहीं जान रहे, तो तुम तो पशु से भी महा गिरे हुए हो, सबसे गिरे हुए, कुत्ते से भी गिरे हुए। कुत्ता तो आगे चल के मनुष्य बनेगा, तुम तो आगे चल के मनुष्य नहीं बनोगे, तुमने तो कृपा की इतनी अवहेलना कर दी है, करिए कि नहीं अवहेलना, राधा रानी हमें भोग लगाने का अवसर दे रही है इतनी गंदी गंदी भीतरी स्थिति में, है कि नहीं भीतरी स्थिति गंदी, अवसर मिल रहा है कि नहीं, रोज भोग लगाते हो हाँ, तो ये छोड़ के फिर वही महाराजा विराज बन के घर में बैठ गए, स्टार्टर फिर मुख्य राजभोग, पहले स्टार्टर देन राजभोग एंड देन मीठा, जैसे पान पीढ़ी खाते ना भोजन के बाद राधा कृष्ण, ये भी मीठा चाहिए साहब को, डिस्गस्टिंग, सबसे हीन है सबसे मलिन है ये स्वसुख वासना। क्या क्या करते हैं हम इसके लिए दिन भर में, जीभ निकाल के मार्केट में जाते हैं, ये खा लूं, वो लेके आते हैं उनको फटाफट भोग लगा देते हैं, वो ये तो चलो हुआ स्वामी जी का, जो स्वामी जी हैं घर में बेटा क्या खाओगे, ये क्या होता है, ये क्या है, ये तुम्हारे ठाकुर जी घर में तुम तीनों भाई तुमको एक दो दिन पहले सोच रहे थे कि आज मैं ये चीज भोग लगाऊंगी, उन्होंने क्या करना है, क्या खाएंगे कि नहीं, तुम पूरे हफ्ते की लिस्ट बना के रखो मैं पूरे हफ्ते ये भोग लगाऊंगी, इसमें क्या है, सबको इतनी वैरायटी मिलेगी कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, मम्मी तो इतना कुछ बनाती है, उनको भीतरी स्थिति नहीं पता मम्मी की, इतनी उन्नत स्थिति है कि वो तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रही है सब कुछ, मिलेगा उनको सब कुछ, वही मैक्रोनी पिज्जा ही खिलाना, पर उनकी उनको उनको केंद्र में रख के, ये स्वस्व वासना से रहित होना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये डायर नेसेसिटी है, समझ जाओ अच्छे से, ये बहुत हीन है, इसके बिना जितना भी जप करो। आओ बाबा जी के कुछ शब्द आपको सुनवा देते हैं, शायद उनके शब्द समझ आ जाए, कितने संत आए और चले गए पर हम एज इट इज, बाबा जी के शब्द सुनते हैं कुछ, पेज 235। जो साधक है उसको विचार करना चाहिए, देखिए कितना भूल जाना पड़ेगा कि हम लीला चिंतन करते हैं अपने मंजरी स्वरूप में, तो विचार करना चाहिए कि वो चिंतन कर रहे हैं वो स्वयं के सुख के लिए कर रहे हैं कि उनको सेवा करके सुख पहुंचाने के लिए। पहली बात तो लीला चिंतन नहीं करते अधिकांश भक्त, जो करते भी है उसमें कितना सावधान रखना है, क्या मैं अपने सुख के लिए लीला चिंतन कर रहा हूं, नहीं, उनको सुख पहुंचाने के लिए लीला चिंतन करना है, जो कुछ करना है अपने सुख के लिए स्थान ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। यहां स्वार्थ की गंध है ही नहीं, और जहां स्वार्थ की गंध है वहां ब्रज प्रेम का आस्वादन नहीं है, स्वार्थ की गंध मतलब स्वसुख वासना, जहां पे स्वसुख वासना है वहां ब्रज प्रेम का आस्वादन नहीं हो सकता, जहां पे भी स्वसुख वासना है। और जाने बाबा जी और क्या कहते हैं, कहां कहां, पेज 157, हम पेज इसलिए बता रहे हैं जाके पढ़िएगा। मन थोड़ा संसार को और थोड़ा राधा रानी को देने से उनकी सेवा रस की माधुरी प्राप्त नहीं होगी, संपूर्ण मन देना होगा, थोड़ा राधा रानी को थोड़ा संसार को, हम तो ये तो बाबा थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं परसेंट, हम तो कहेंगे 99% भी राधा रानी को 1% भी संसार को, तो भी कुछ नहीं मिलेगा, पूरा बोल रहे हैं संपूर्ण रूप से राधा रानी को मन देना होगा, संपूर्ण रूप से पूरा, अपनी झूठन दोगे क्या, मतलब अपने मन जो है उसमें बचा खुचा झूठन जो है वो देंगे क्या। और सुने फिर पेज 173, कोई ये सोचे कि मैं तुरंत ही आस्वादन करना चाहता हूं, मुझे कोई तुरंत भगवत प्राप्ति करवा दो, तो ऐसा तो होगा नहीं, सो प्रकाश राधा माधुरी जो है साधक इच्छा करते ही आस्वादन कर लेगा, सो नहीं है, सो नहीं है। तो कैसे है, साधन के सुमार्जित चित्त में, मतलब स्वसुख वासना से रहित जो चित्त होगा उस चित्त में राधा माधुरी जो है स्वयं उदित होगी, स्वयं किसके चित्त में, तुम चाहो स्वयं एकदम से आस्वादन कर लेंगे, दिन भर भोग वासनाओं में डूबे हो और स्वयं एकदम से आस्वादन कर लोगे, तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, सुमार्जित चित्त में जो आपका साफ चित्त होगा स्वसुख वासना से रहित उसमें प्राप्ति होगी। ये तो हमने बताया भोजन का, तो क्या करना चाहिए, हमें पहले से लिस्ट बनानी चाहिए हफ्ते भर की, जो भी कुकिंग करते हैं घर में जिनके बिगड़े हैं, आज मैं इस हफ्ते ये खिलाऊंगी, ये नहीं कि बड़े दिन हो गए परांठे नहीं बनाए, अरे परांठे उनके लिए बोल रहे हो, क्या मैं इनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं या इनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं कार्य, तो ठीक है, नहीं अगर इनकी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा तो मुझे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होगा, कभी भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी कर ले, ये रेसिप्रोकेटेड हैप्पीनेस है। हम ये सोचते हैं वास्तव में कि हम कितने निष्काम हैं, हम कितने अच्छे हैं, फिर किसी संत महापुरुष का संग प्राप्त होता है तो सब पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी स्वसुख वासना की, स्वसुख वासना नहीं है, स्वसुख वासना की परतें पे परतें पे परतें हैं, परत के ऊपर परत के ऊपर परत, जन्मों का अभ्यास है ना, ये तो किसी महापुरुष की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए, उनका वास्तविक अनुगत्य स्वीकार करने, पूर्ण श्रद्धा हो किसी महापुरुष पे, उनका वास्तविक अनुगत्य स्वीकार कर लें, उनके अनुसार वो जैसे ढालें, जैसे में तराश, हम वो क्या बनना है, स्वसुख वासना से रहित मूर्ति जो कि राधा रानी के सुख में निरंतर लगी हुई हो। जब तक कोई महापुरुष हमारे को दिन रात लगे हमारे को तराशेगा नहीं, कभी भी वो मूर्ति नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे, जो मर्जी प्रयत्न कर लें, कुछ भी कर लें, बिना मार्गदर्शन के तो पता ही नहीं चलेगा स्वसुख वासना होती क्या है। उससे रहित होना तो बहुत बड़ी बात है, स्वसुख वासना का ही बोध नहीं होगा, ये तो एक बात है। हमने ये भोजन की बात क्यों ली, क्योंकि महाप्रभु ही कहते हैं, क्या कहते हैं महाप्रभु, भला ना खाइबे और भला ना पैरीबे। तो खाइबे पे तो हमने विवेचन किया कुछ, अब पैरीबे पे भी आ जाए कि भले कपड़े ना पहनो, साधारण वस्त्र डालो। एक बात बताओ, जो ऊट पटांग या मॉडर्न जो कपड़े जिसे कहा जाता है वो डालते हैं तो किसकी प्रसन्नता के लिए, ये इनकी या महाप्रभु की, किसकी प्रसन्नता के लिए डालते हैं कपड़े, पूछें अपने आप से। महाप्रभु को अगर प्रसन्न करना है, राधा रानी को समझ आ रहा है कि हमको कैसे प्रसन्न करना है सेवा से, महाप्रभु कैसे प्रसन्न करना है, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहां हो तो प्रीत होन गौर भगवान, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के समस्त भक्त किसके प्रधान होते हैं, किसमें प्रधानता है उनकी, वैराग्य की प्रधानता है उनमें, उसको देख के, वो वैराग्य देख के कौन प्रसन्न होते हैं, गौरांग महाप्रभु। अगर हमारे में वैराग्य नहीं है तो गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, वैराग्य होना होगा यदि महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो। और ये जो हमारा प्रवचन है ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका हमारे पे पूर्ण निष्ठा है, ये हमारे सबके लिए ना कोई प्रवचन था ना है ना होगा, हमारे प्रवचन किसी के लिए नहीं, सबके लिए नहीं होते, जिन्हें पूर्ण निष्ठा होगा उन्हीं के लिए प्रवचन देते हैं। और हम इसलिए ये बात आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण सत्र है, ये नहीं समझेंगे तो जितनी मर्जी भक्ति की गतिविधियों में लगे रहें हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। अब कितनी बार जो भक्त होते हैं दुखी रहते हैं, दुख हो जाता है, मूड ऑफ है, हमारा से कुछ छोटी जिज्ञासा हमारा समाधान करें। जब ब्रज प्रेम में उपासक के जीवन में स्वसुख का कोई अनुसंधान नहीं है कि मतलब स्वसुख के लिए कोई कार्य नहीं है तो क्या स्व दुख के लिए कोई कार्य होगा, आप बताओ, इतना तो बुद्धिमान हम सब होंगे, स्वसुख का स्थान नहीं है ब्रज प्रेम में तो क्या स्व दुख का स्थान होगा। ये दुखी होना, स्व दुख स्वसुख जो है ये केवल स्वसुख वासना के कारण है, ये दुखी हम होते हैं ना केवल एक कारण है इसका, स्वसुख वासना और कुछ भी नहीं, हमारे दुखी होने का कोई कारण नहीं है आउटसाइड, इनसाइड कारण है स्वसुख वासना। हमारे भक्त संबंध अच्छे नहीं है, अच्छा तो एक ही कारण था है और रहेगा, स्वसुख वासना। जिसमें स्वसुख वासना नहीं होगी उसके उसकी गंध क्या निकलेगी, चतुर्दिशा से क्या गंध निकलेगी, कृष्ण प्रकट होंगे उसके बोलने से, उसके जेस्चर से, उसके हर गतिविधि से। तो अगर हम स्वसुख वासना से रहित होंगे तो हम इतने आकर्षक बन जाएंगे कि कोई हमें छोड़ना ही नहीं चाहेगा, इतने आकर्षक बन जाएंगे कोई नहीं छोड़ेगा। परंतु अगर हमारे संबंध खराब या किसी प्रकार है तो हमारे स्वसुख वासना का काफी मात्रा में है, हमने देखा वो कैसे कैसे कपड़े डालते हैं, वो चमकीले कपड़े, हमने पूछा चमकीले वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं नियॉन बोलते हैं, नियॉन ऐसा हमने सुना शब्द नियॉन, वो चमकीली पेंटे डालते हैं पुरुष भी आजकल, जंग लगे कलर होते हैं उनकी भी पेंटे होती हैं, वो पता नहीं हरी और जंग लगे कलर, यानी ये वो सोचते हैं हम इससे आनंद मिल जाएगा। भक्त महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, ये तो क्या है नियॉन जंग प्रधान, क्या है ये सब, घूमना फिरना तो आप जानते हैं किसकी किसकी तृप्ति के लिए, उनकी राधा रानी की तृप्ति के लिए हम विदेश घूमने जाएं या कहीं भी जाएं तो किसकी प्रीति है, किसकी तृप्ति है उसमें। कई लोग हमारे पास आते हैं बस ऐसा आशीर्वाद दे दो बस तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए, अरे भाई तुम पूरा दिन काम धंधे में लगे हो, उसके बाद परिवार धंधे में लगे हो, उसके बाद तुम हमें कहते हो ऐसा कुछ भगवत प्राप्ति, ऐसे कैसे होगा। जब तक अपने आप को सेवा में झोंकोगे नहीं कुछ वर्ष निष्कामता से, तो कैसे तुम्हारा चित्त परिमार्जित, तो कैसे तुम राधा रानी का चिंतन कर पाओगे। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाने का चिंतन, जॉब किया यहाँ के, ऐसा नहीं होता। सेवा में झोंकेंगे तो जैसे कुकर होता है, पहले कुकर गर्म होता है, बाद में अंदर का चावल गर्म होता है। पहले शरीर जो है सेवा में झोंकने से वो सुख वासना से रहित, इतना शरीर को सुख पहुंचाने के अभ्यास है कि इतनी सेवा करेंगे तो जाके इससे रहित होंगे सुख वासना से, नहीं तो कैसे रहित होंगे बताइए। रोज हमें भगवान से, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें एक और दिन दिया, किस लिए? स्वसुख वासना से रहित होने के लिए। कल तक तो मैं नहीं हो पाया, आज पक्के होऊंगा। रोज सुबह उठें, गुरु गौरांग को प्रणाम करें और बस आज निर्णय ने, आज मैं स्वसुख वासना में कोई कार्य नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करूंगा, कोई भी कार्य स्वसुख वासना में, ना किससे बात करूंगा स्वसुख वासना को लेके, ना कुछ बोलूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना कपड़े पहनूंगा, केवल आपकी प्रीति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। और आपको सुख पहुंचाने में कभी तृप्त नहीं होऊंगा, हमेशा अतृप्त रहूंगा आपको सुख। ये नहीं कि हाँ भाई बहुत सेवा कर ले थोड़ा आराम करेंगे साहब, अरे साहब ऐसे नहीं होता। ये बाबू बनने की चीजें छोड़ो, जीवर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, मंजरी मंजरी सुन सुन के दास शब्द को भूल जाते हैं, हम हैं तो दास ही ना अंत में। अतृप्त रहना, मंजरी हमेशा अतृप्त रहती हैं युगल की सेवा करके, वो कभी तृप्त नहीं होती हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अर्जुन को भगवान ने बोला कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो जब युद्ध किया जा सकता है भगवान का स्मरण करते हुए, तो हम सामान्य पारिवारिक जीवन या अपना काम धंधा में जीवन नहीं जी सकते भगवान का स्मरण करते हुए? अवश्य जी सकते हैं। ये भ्रम को हटा दें कि पारिवारिक जीवन में शुद्ध भक्ति संभव नहीं है, नहीं, पारिवारिक जीवन में शुद्ध भक्ति संभव है। हो सकता है कोई लेडी, कोई स्त्री रहते हुए आप सब में से रहते कर रही है, कर हो क्या सकता है, कर रही है शुद्ध भक्ति का यादन कर रही है, और कोई लोग बाबा जी विरक्त होकर भी ना कर रहे हो, तो ये मत सोचिए कि जो वो है वो स्वसुख वासना से रहे। हो सकता है यहाँ स्त्री हो सूट पहनी हुई वो स्वसुख वासना से रही, वहां पे लंगोट डाल के भी स्वसुख वासना से रहित ना हो कोई, हम ये नहीं कह रहे ऐसा है, ऐसा भी संभव है। तो ये कभी वो नहीं होना कि हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थी हो तो क्या हुआ। साधक को प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक क्षण की भगवान की प्रीति के लिए ही करनी चाहिए, भगवान की प्रीति प्राप्त होगी मेरे को इसी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। और ये प्रार्थना करना चाहिए भगवान से रोज कि जैसे भगवान मेरी आयु बढ़ रही है वैसे मेरी तत् सुख वासना बढ़ती रहे। आपको सुख पहुंचाने की वासना रोज बढ़ रही है ना मेरी आयु, तो रोज मेरी वासना बढ़ती रहे तत् सुख सुखित्वम, अपने से हटके राधा रानी को सुख पहुंचाने की वासना प्रत्येक क्षण बढ़ती रहे, जैसे रोज बढ़ती है मेरी उम्र। और मैंने कल गलती करी ना, कल तक आज नहीं करूंगा, मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा स्वसुख वासना से युक्त, ना मैं कोई बात करूंगा, ना मैं कुछ खाऊंगा, ना मैं कोई चेष्टा करूंगा, ना मैं कपड़े डालूंगा ऐसे। किसकी प्रसन्नता के लिए? महाप्रभु श्लोक याद कर लो, छोटा सा है, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहां हो तो प्रीत हो गौर भगवान। वैराग्य को देखे प्रीति होती है भगवान महाप्रभु को। देखो पशु तो समझ नहीं सकता कि स्वसुख वासना से रहित होना है, यदि हम भी नहीं समझे तो मनुष्य जन्म क्या फायदा हो। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान पूछ के विष क्या है, विष स्वसुख वासना, ये विष है, विषय मतलब विष। ये राधा रस सुधा निधि, इसमें सिर्फ राधा रानी की बातें नहीं बोली गई, ये 84 नंबर श्लोक सब पढ़िएगा, अलम विषय वात्या नरक कोटि विभत्सया, ये जो विषय सुख है स्वसुख वासना जितनी भी है ये कितने नरकों, एक कोटि नरकों के समान गंदी है, विभत्स है, घृणित है, दुर्गंधमय है। क्या स्वसुख वासना जो है ना अपने इसको शरीर को तृप्त पहुंचाने की, खाने पीने कपड़े पहनने की, घूमने की, ये जो वासना है ना ये कोटि नरकों से गंदी है, घृणित है, दुर्गंधमय है। ये प्रबोधन सरस्वती कहते हैं कोटि नरक विभत्सया, कोटि नरक, एक नरक कितना गंदा होगा सोच सकते हो, कोटि नरक कौन सी बात है? अलम विषय वार्तया, पढ़िए 84 नंबर श्लोक है, सब पढ़िए। सुधा निधि, और ये जो है स्वसुख वासना, हमें जो मंजरी हैं, ये जो भक्त हैं, उन्हें दे शुड बिकम एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, वो आनंद का एक्सप्रेशन बने, इनको देख के कितना कितने खुश हैं ये व्यक्ति। ऐसे कोई भक्त को देखो डरना चाहिए, तो ये खुश कैसे है इतना व्यक्ति, इनकी आंखों में कितना सुख है, इनके मुख पे कितना सुख है, इनके चेहरे पे कोई है ही नहीं कि मुझे कुछ किसी का से कुछ चाहिए। तब जो संतों के पास लोग बैठना चाहते हैं, उनको दर्शन का, क्यों? उनका चेहरा एकदम अलग होता है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो हमें बाकी सारी दुनिया को चाहिए चाहिए, भगवान से भी चाहिए, परिवार से भी चाहिए, पत्नी से भी चाहिए, बच्चे से भी चाहिए, कुत्ते से भी चाहिए। पालतू कुत्ता रखे उसे कौन क्या, कुत्ता मुझे आनंद पहुंचाएगा, जीओडी आनंद नहीं पहुंचाएगा, डीओजी आनंद। कितना कितनी उत्कृष्ट बुद्धि है, गॉड और डॉग बस मुझे आनंद पहुंचाए, कोई कोई भी चलेगा। बिकम एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, ना कि सीकर्स ऑफ हैप्पीनेस। जो आनंद को बस प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, ऐसे ही जीव बाहर निकाल के, उसको आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। स्वसुख वासना रहित होके राधा रानी की तत्सुख वासना में एकदम तत्पर रहेंगे प्रतिक्षण, तो आनंद प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। हम ये गोल्डन शब्दों में लिख लें और एक बात सोचो, स्वसुख वासना क्या है? मुझे कुछ चाहिए। तो जैसे ही आप कुछ बोलते हो मुझे कुछ चाहिए, तो क्या हो जाते हो? क्या हो जाते हो? भिखारी, और भीख मांग रहे हो सुबह से रात तक, तो क्या सुख मिलेगा आपको? भीख मांग रहे हो कुछ चाहिए तो, और जैसे कुछ नहीं चाहिए, और शाहों का शाह, शाहों का शाह कुछ चाहिए, और जब कुछ चाहिए, कटोरा डालने की जरूरत नहीं है, उस समय भिखारी है व्यक्ति। इंद्र भी भिखारी है, बोलो इंद्र तो इतना बड़े धनवान है, वो भी भिखारी यूं है। आपकी हमारी तो बात ही क्या, अगर कुछ चाहिए तो। देखो, परिवार में रहो या कहीं भी रहो, एक सूत्र को अपना लो, मेले में रहो तो भी अकेले रहो, मेले में रहो तो भी अकेले रहो, और अकेले में रहो तो भी मेले में रहो। इसका मतलब क्या है? सबके साथ हो तब भी सबसे अलग समझो खुद को, कि मैं मंजरी हूं, मैं राधा रानी की सखी हूं। मेले में भी अकेले, और अकेले जब हो घर में, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सेवा नहीं है, तो अकेले में मेले में रहो ना, दुखी होने की जरूरत नहीं है। अकेले मेले पूरे राधा रानी सखियां, सारा ब्रज धाम प्राप्त हो गए, सेवा प्राप्त हो गई, गोटिका प्राप्त हो गई, लीला चिंतन करो ना। अब मेला यही तो है, यही तो मेरे पूरा मेला तो लगा हुआ है ऑल्टर में। अकेले में मेले में रहें, और जब मेले में हो मतलब सबके साथ हो तो अकेले में हो। हर समय बस मन में यही पुकार, हाय कहाँ हो राधा रानी, मेरी राधा रानी कहाँ हो, मुझे दर्शन दो, मुझे सेवा दो। तत्सुख वासना से भरा हुआ होना चाहिए हृदय, थोड़ी नहीं। भक्ति करके आनंद क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि भक्ति तो रसमय है, मीठी है, मधुर मिष्ट से मिष्ट, परंतु उसमें हम नमक डाल देते हैं। जब खीर में कोई नमक डालोगे तो आनंद स्वाद कहां से मिलेगा? अगर भक्ति में स्वाद चाहिए तो स्वसुख वासना से रहित तो होना पड़ेगा। ये ऑल्टरनेट, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी एक्टिविटी है। हमें तो तत्सुख सुखित्वम का विधायक बनना पड़ेगा। विधायक समझते हो? विधायक होता है आपको पॉलिटिशियन में, एमपी। विधायक मीन्स वो चीज को पुश करने वाला, मतलब एक कोई कार्य विधायक, लीडर। तो हमें तत्सुख सुखित्वम का पुश करने वाला विधायक होना पड़ेगा, कि हम यही कार्य सोचें, करें और कहें। नहीं तो दिन भर में क्या कहते हैं हम, अपने थॉट्स का ही बस वर्धन करते हैं और उसी का बोध करवाते हैं दूसरे को। भक्तों से बात करते हैं, क्या मेरे मन में ये चल रहा है, मैं उसके मन में ये चल रहा है, ये क्या है? 10:9 भगवत गीता, भगवान की वाणी को समझें हम। बोधयन्तः परस्त मच्चिदा मद्गत प्राणा, बोधयन्तः परस्परम तुष्यन्तम च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो मेरा बोध करा के एक दूसरे को आनंद प्राप्त करते, ना कि अपने अपने थॉट्स का बोध करवाते रहते हैं। हमारे थॉट्स का बोध खुद को भी नहीं करवाना, भगवान के विचारों का बोध, उनकी लीला का, उनके सिद्धांतों का बोध करवाना। हम मंजरी बनना चाहते हैं, हाँ क्या मरने के बाद ही? जायज प्रश्न है, जहां मरने पे जाना है वहां जीवित ही क्यों ना जाइए जी? जहां मरने पे जाना है वह जीवित नहीं जा सक जाना क्या? मरने पे मंजरी बनना है तो जीवित में मंजरी क्यों नहीं बनना? जीवित में यही बने रहना है, वर्मा शर्मा और सब। जहां जीवित जाना है, मरने पे जाना है, जीवित ही क्यों ना जाइयो? जहां अंत समय जाना है वहां जीवित ही क्यों ना जाए? अंत समय हम मंजरी बनने का मतलब क्या है? स्वसुख वासना रहित होना, राधा रानी के सुख का विधायक बनना, वही तो अभी बनने, वही तो साधना है। जब ये साधना नहीं करेंगे, देखो प्रेम भक्ति में, साधना भक्ति में एक लिंक होता है, एक स्वाद होता है, पर साधना भक्ति वैसी करेंगे तो स्वाद होगा। प्रेम भक्ति क्या है? स्वसुख वासना रहित, राधा रानी के सुख से भरी हुई, तो यही तो साधना करेंगे तो आनंद मिलेगा, तो ही तो कंप होगा। ये अश्रु कंप क्या है? ये आनंद की तो दशा है, और क्या होता है? ये अश्रु कंप हम देखते हैं संतों के जीवन में होते हैं, हमारे को दिखता है, वो क्या होता है? वो आनंद की दशा ही तो है। वो उनको कैसे है? वो स्वसुख वासना से रहित है, सुख सुखित्व में के विधायक है। हम भी वैसे, हम हमारा भी वैसे हो जाएगा, ये तो साइंस है। और हम ये नहीं करेंगे तो कोई हमारे को भगवत प्राप्ति गिफ्ट में तो दे नहीं सकता। हाँ चलो तुम पूरा भोग करते रहो, इधर उधर घूम फिर के आओ, कुछ भी करो, खाओ पियो, कोई भी कपड़े डालो, ये लो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो भी हम तो सुनते रहते हैं बातें, तो बड़ी शर्म भी आती है, कैसी कैसी बातें होती हैं। और बोलते हैं वो ना वहां के समोसे बहुत अच्छा है, वो लाके भोग लगा देना। अरे ये क्या है अब, कहां राधा रानी और कहां वो छोटी दुकान के समोसे, और ये क्या कर रहे हो तुम? भोग लगा दे, तुम खुद ही भोग लगा लो, पॉइजन का पत्ता डाल के खुद ही भोग लगा लो। वैसे तुम विष ही तो खा रहे हो, विष मतलब विष समोसा। तुमने क्या, तुम एक आत्मा कहां और ये समोसा कहां? क्या गिरी हुई सोच है, सपने में भी स्मरण नहीं होने चाहिए ऐसी चीजों का। इसमें हमें आनंद लगता है, वो जब हम ठाकुर जी के बर्तन मांजते हैं उसमें किसी को आनंद लगता है? हमें तो बहुत आनंद लगता है। क्यों? अपने छोटे बच्चे के फटे पुराने कपड़े या जूते होंगे, उसको हाथ में पकड़ के भी अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है ना, क्योंकि उसे मेरा माना है, मेरा, मैं का। मेरा क्या होता है? मैं का, उसे कहते हैं मेरा। उसी प्रकार से मेरी राधा रानी ने इसमें अभी छोले भटूरे खाए थे, आई मैं कितना भाग्यशाली हूं, ये तो साफ करने का मौका मिला, अरे मंजरी स्वरूप में साफ करते रहे, कितना भाग्यशाली हूं। उन्होंने प्रसाद पाया, वो मैं साफ कर रहा हूं, पोछा लगा रहा हूं। मैं क्या, पोछा लगा दो तुम, आज तुम्हारी बारी है। ये क्या कर रहे हो, कौन सी भक्ति कर रहे हो? ड्यूटी कर रहे हो गवर्नमेंट की? हम तो बर्तन मांजते, हमें इतनी सुख मिलता है, इतना अच्छा लगता है, आहा, हमारे स्वामी ने इसमें पाया है, हम इसको मांगे, आहा। इंतजार करें, नहीं समझ आता, गुरुजन कुछ लेते हैं उनके प्लेट मांजने का मौका मिलता, कितना अच्छा लगता है ना? वो तो एक बूंद है, वो प्रेम का महासमुद्र है राधा रानी। हमें कितना हृदय सिराना चाहिए प्लेट मांजते। भक्ति में ना क्रिया प्रधान कुछ नहीं है, ये भाव प्रधान है, यह आप कितने भाव से कर रहे हो चीज, सो सुख वासना से रहित हो। तो बोलते हैं हमारी एकदम से कोई भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कोई एकदम से नहीं, कोई स्वसुख वासना से रहित हुए बिना ना किसी को भगवत प्राप्ति हुई थी, ना हुई है, ना होगी। तुम अभी हो जाओ रहित तो अभी भगवत प्राप्ति, और कभी ना हो रहित तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं। देखो ये सत्र समझ आया अगर तो जीवन कैसा होगा, अगर ये सत्र समझ आया तो स्वसुख वासना रहित। बाबा बता रहे हैं इसी में कि जब ऐसा हम उत्कंठा में जीवन जीते हैं राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, तो इनमें नए जीवन का गठन होता है, बिल्कुल नया जीवन, एक नई ही लाइफ, न्यू लाइफ, नए जीवन का गठन होता है। तो जो नए जीवन का जो गठन है, आप इस साइंस को समझो, शांति से समझो, जब आप स्वसुख वासना से रहित होके राधा रानी के प्रीति पहुंचाओगे तो उसमें प्रेम भक्ति जुड़ी हुई है, समझ रहे हो सब, तो जब ये करोगे ना तो आपको आनंद प्राप्त होगा। जिस कार्य में आपको आनंद कैसे प्राप्त होगा, जब स्वसुख वासना से रहित होगे तभी आनंद प्राप्त होगा, ये समझ रही हो, क्योंकि प्रेम भक्ति का एक कर्ण मिलेगा आपको, उसी को आनंद बोलते हैं। तो जब आनंद प्राप्त होगा तो आपको आत्मबल मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस कि हाँ देखो मेरे और करना है, मेरे को और करना है, तो आप और ज्यादा भक्ति करोगे। हमारा क्या होता है कि आत्मा डाउन जाता है, मेरा मैं नहीं कर रहा, क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वसुख वासना से मैं जीवन जी रही हो, इसलिए तो सुख नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिला तो आत्मबल नहीं मिल रहा। आप साइंस समझ पाए, साइंस समझ पाए, स्वसुख वासना से रहित हो, प्रेम भक्ति के साथ जुड़ा तार तो आनंद मिला, तो और कर, जहां आनंद में तो वो तो बलात्पूर्वक मन जाएगा वहां पे, अब रोक सकते हो मन को, अरे प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़ जाए रोक दो, और रुकोगे नहीं आप, आनंद बलात् भाग जाओगे आप, क्यों, आपका स्वसुख वासना रही तो आनंद मिले रहा तो आप कैसे छोड़ोगे, आत्मबल इतना आपका इतना पुष्ट होगा। वो होता क्या है कि वो स्वसुख वासना तो हमें पता ही नहीं होती क्या है, अपने सुख के सब कर रहे हैं तो इसलिए आज ठीक है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, तो मन की सुनते रहोगे तो कर चुके तुम्हें भक्ति हो चुकी तुम्हें भगवत प्राप्ति, मन के सुनते रहे तो भगवत प्राप्ति करनी है, मन बुद्धि को बाहर रख के बात करो, ये मैं नहीं हूं, ममे वंशो जीव भूतो जीव लोक सनातना मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, मतलब क्या है इसका, मन और पांच इंद्रियों के साथ जीव विचरण कर रहा है, वो मन नहीं है, जैसे आप अपने कार के साथ या किसी चीज का विचरण कर रहे हो तो आप उससे अलग हो, तो आप मन इंद्रियों से अलग हो, मना षष्ठानी छठी, षष्ठी समझते हो छठी, मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के अंश हैं सारे मन वगैरह, क्या तुम प्रकृति के अंश हो, तुम प्रकृति के अंश हो नहीं, मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, तो हम मन से अलग हैं, हम मन नहीं हैं, मन प्रकृति का अंश है, हम प्रकृति के अंश नहीं हैं। छोटी सी बात बता के हम सत्र को, ये तो असीमित सत्र है, इसमें तो जितना भी जाना चाहो जा सकते हो, छोटी सी बात बता के इसको विराम ही देना चाहेंगे। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं भागवतम के अंदर, निजांग अपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम नामे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। इसका मतलब है अर्जुन, गोपियां अपने अंगों की रक्षा या अपनी देखभाल इसलिए करती हैं कि उससे मेरी सेवा होती है, उसको छोड़ के, गोपियों को छोड़ के मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र कोई भी नहीं है। जो गोपियां है ना, वो नहाती धोती खाती पीती अपने शरीर का पालन किस लिए करती हैं, केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं करती। राधा रानी का जीवन जो है, वो अपने केश संवारती हैं, अपनी वेणी में बालों में फूल लगाती हैं, मालती की माला पहनती हैं, वेशभूषा करती हैं, श्रृंगार करती हैं, किसके लिए, सिर्फ श्री कृष्ण के, सिर्फ ओनली, अपने को सुख के लिए नहीं, सुस्वादु पदार्थों का भोजन करती हैं, पर जीव के स्वाद के लिए नहीं। ये सभी गोपियों के लिए भगवान कह रहे हैं कि गोपियां मेरी सबसे ज्यादा प्रीति की भाजन है, वो सब कुछ कार्य जो है वो मेरे सुख के लिए करती हैं। जो हमने ये बात पढ़ी तो हमारे को ये लगा कि ये बात हम सब साधकों को बताएंगे कि साधकों को क्या सोचना चाहिए ये पढ़ के, कभी श्री कृष्ण मेरे बारे में बोलेंगे कि ये सब कुछ मेरे प्रसन्नता के लिए करते हैं, ये खाते मेरे प्रसन्नता के लिए हैं, ये कपड़े मेरे प्रसन्नता के लिए पहनते हैं, ये चलते मेरे प्रसन्नता के लिए, बोलते मेरे प्रसन्नता के लिए। श्री कृष्ण गोपियों के बारे में बोल रहे हैं ना, श्री कृष्ण कभी मेरे बारे में बोलेंगे, ये सब कुछ मेरी प्रसन्न, बिक जाएंगे भगवान, बिक, यही तो तरीका है उनको खरीदने का, वो तरीका क्या है, हरे कृष्णा और सो सुख वासना हृदय भरा हुआ, ऐसे भगवान भगवत प्राप्ति हुई है किसी को? उन ये हम एक पढ़ रहे हैं श्लोक, तो ये हमारे को जब हम सुख वासना से रहित होंगे अलग प्रकार से प्रकाशित होगा सब कुछ। मतलब कभी वो दिन आएगा श्री कृष्ण बोलेंगे हाँ ये राधा राधे देखो ये ना ये भक्त है ना ये सुवर्ण सोदास या सुवर्ण सब कुछ मेरे लिए, ये खाता भी मेरे लिए, पानी भी मेरे लिए पीता, ऐसे देखता भी मेरे लिए, आंखें नीचे से ऊपर नहीं उठाता, आंखें नीचे रहती हैं हमेशा, ऊपर उठाता है तो मेरी प्रसन्नता। अभी श्री कृष्ण मेरे बारे में भी बोलेंगे ऐसा, गोपियों के बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना, तो महाप्रभु ने हमको क्या बोला हुआ है, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार। तो ये गोपी भाव की तो बारे में बात बता रहे हैं आपको, सोसुख वासना रहित राधा रानी मादना के महाभाव बती है, वो आस्वादन प्राप्त करना है ना, तो महाभाव का तो मतलब ही होता है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा होती ही नहीं है इसमें। महाभाव का मतलब ही यही होता है कि उसमें स्वयं की इंद्रियों के लिए प्रीति की वांछा वो होती ही नहीं है। बिजनेस करें तो बिजनेस करते हुए हम कभी भी भगवान को ना भूलें, और भजन करें माला करें गायत्री तो कभी संसार को याद ना करें। और हम करते क्या है, बिजनेस करते पूर्ण रूप से भगवान को भूलते हैं, और गायत्री और माला करते पूर्ण रूप से संसार को याद रखते हैं। इसका मूल पता क्या है, स्वसुख वासना। जिसकी स्वसुख वासना ना हो वो बिजनेस करते भगवान को भूल ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता। भूलोगे कैसे तुम, तुम उनके प्रीति के लिए कार्य कर रहे हो, तुम ये बात भूलने की है कोई? भूल रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि तुम अपनी प्रीति के लिए कार्य कर रहे हो। बिजनेस करते हुए उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए, उन्हीं के लिए। उन्हीं के लिए का मतलब है उन्हीं के लिए, फिर जब उसमें धन उपार्जन हो तो वो ठाकुर जी की सेवा में, ना कि अपने लिए फिर से कपड़े और उसे गहने लेने में लग जाए और खाना पीना करने घूमने में। तो वो तुमने याद काहे को रखा भगवान को, तुम तो कर तो वही कर रहे हो, फिर घूमे खाए पिए कपड़े नए ले लिए बस। और जो जप या गायत्री कर रहे हैं तो कुछ भी संसार का स्मरण नहीं होना चाहिए, कुछ भी। जिस जिस चीजों का स्मरण हो रहा है गायत्री करते हुए हरि नाम करते हुए, ये समझ लो उसमें आपकी स्वसुख वासना भरी हुई है। जिस जिस चीज का स्मरण हो रहा है, जिस जिस व्यक्ति का, जिस जिस वस्तु का, जिस भी वस्तु का हो रहा है, जिस भी व्यक्ति का, उसमें आपकी स्वसुख वासना, ये व्यक्ति मेरे को सुख दे दे। और जिससे द्वेष करोगे वो आपको गायत्री और हरिनाम में जरूर याद रहेगा, भगवान याद नहीं रहेंगे। स्वसुख वासना रहित तो होना पड़ेगा हम आनंद में रहना चाहते हैं। और जो भगवान नाम है, भगवान नाम ये 64 माला आप लोग करते हो अच्छी बात है, पर ये नाम बढ़ता रहना चाहिए, इतना निरंतर बढ़ना चाहिए कि ये श्वासों में घुल जाए ना, श्वासों में घुले। और हमारे पास स्टेथोस्कोप लगाए तो ये होना चाहिए अंदर राधा राधा निकल रहा है, राधा या हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये इतना इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, ये 64 माला तो थोड़ी देर में हो जाती है, 2-4 घंटे में। कितने लगते हैं 64 माला करने में, 2-4 घंटे तो लगते हैं, तो लग गया तो एक और 64 माला कर लो, 8 फिर दिन बच गया इतना बड़ा, एक 64 माला और कर लो, फिर बच गया तो एक और कर ली। हम ऐसे कई भक्त जानते हैं 7 लाख नाम रोज करते हैं, 7 × 64 कई सालों से, एक दो दिन नहीं, रोज 7 × 64 ऐसा भी नाम। इतना नाम का हम ये नहीं कहेंगे हरे कृष्ण जप करो केवल, आप कीर्तन करो, यही मेरी राधा रानी करो या गौरांग है या आमाल गौरा जो अच्छा लगे, पर करो नाम को बढ़ाओ, नाम श्वासों में घुलना शुरू हो। खाली बैठ के दुखी हो सकते हो तो खाली बैठ के सुखी नहीं हो सकते? अपने आप से प्रश्न पूछे। खाली बैठे बैठे दुखी हो जाते हैं। ब्रज प्रेम में स्व सुख का कोई स्थान नहीं है, तो स्व दुख का कहां स्थान है? मेरा मूड ठीक नहीं है, तो वही बात, मेरी मिक्सी ठीक नहीं है, फेंको मिक्सी को। और हमें स्वसुख वासना है तो निश्चित है कि हमें संतों में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। यदि पूर्ण श्रद्धा होगी तो स्वसुख वासना रह ही नहीं सकती, रह नहीं सकती। श्रद्धा नहीं है इसलिए स्वसुख वासना रहती है। अंत में सिर्फ एक ही चीज बोलकर हम विराम देंगे। राधा रानी को भोग लगाने का मौका मिल रहा है तो कितनी बड़ी कृपा हो गई ठाकुर जी को, रूप मंजरी सब मंजरियों को भोग लगाने का मौका, इतनी बड़ी कृपा। इसको रियलाइज करें, जितना हम रोज कृपा को रियलाइज करेंगे, वैल्यू करेंगे, तो उतना हमारी आत्मीयता, हमारा लगाव बढ़ता रहेगा। सोचो सुबह उठते याद करो मेरे पर कितनी कृपा है, हम उठते हैं ऐ क्या करो, ऐसे ऐसे से उठते हैं, क्या कैसे उठे, मुझ पर कितनी कृपा है, मुझ पर कितनी कृपा है, चारों दिशा से मुझ पर कृपा ही कृपा हो, मुझ पर कृपा के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। राधा रानी का नाम लेने को मिला, ये कथा सुनने को मिल रही है। क्या कथा सुन रहे हो? प्रार्थिताम अभी कृष्णेन तथा भोग परांगमुखी। कृष्ण प्रार्थना करते हैं आपकी अंग संख्य, आप रिजेक्ट कर देते हो, ये आप कथा सुन रहे हो, कितनी बड़ी कथा है। तो कृपा को रियलाइज करें, और जितना रियलाइज करेंगे उतना लगाव नेचुरल होगा। और अगर हम चेष्टा जैसे भक्ति में कार्य करते हैं, निष्काम भी कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सकाम ही करते हैं, सिर्फ निष्काम भी कार्य करते हैं, पर क्योंकि स्वसुख वासना जो आगे के दिन में जो होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जो निष्काम कार्य आपने करे हैं स्वसुख वासना सहित, वो उसको चाट जाती है। यदि मार्गदर्शन ही हो जो हम कमाते हैं ना, स्वसुख वासना सहित होकर इतनी सेवा करते हैं जो हम कमाते हैं, तो वो ही हमारा स्वसुख वासना उसे चाट जाती है, तो स्कोर जीरो का जीरो हो जाता है। यदि मार्गदर्शन में रहेंगे तो ही हमारा कोई बचा पाएगा स्वसुख वासना से, नहीं तो हमारी स्वसुख वासना ही हमारी भक्ति को चाट जाएगी, निगल जाएगी। अपने आप को हम यही समझाएं, यदि वो मेरी हैं, यदि राधा रानी मेरी है, हम खुद नहीं रहे, यदि राधा रानी मेरी है तो उनके सुख में मैं सुखी हूं, उनके दुख में मैं दुखी हूं हर क्षण। यही मेरे को अभ्यास बनाना है। जब तक मैं ये अभ्यास नहीं बनाऊंगा, जैसे मैं प्रथम प्रारंभ में कहा था, खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना कर लो। यदि कोई खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना करे तो क्या वो स्वसुख वासना से रहित हो जाएगा? रहित होना होगा। और राधा रानी के सुख के विधायक बनेंगे तो आनंद के जो जितने भी स्रोत हैं, हम कृपा चाहते हैं, कृपा 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 तो मिल रही है स्वसुख वासना से रही, तो राधा रानी के तो कृपा के झरने सब फूट उठेंगे। आज ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, इसी उपलक्ष में हमने आज ये बात सूत्र बताया, ताकि हम ये बात स्मरण करें कि इनके सुख के लिए ही हमने कार्य करना है दिन रात। घर में हम बैठे हैं तो इनको ये हैं बॉस, हम बॉस नहीं है। जो हम भोग लगाते हैं हम लिस्ट बनाए, हाँ ये नहीं कि मैं ये खाऊंगा सात दिन, इसके लिस्ट नहीं बनानी, लिस्ट बनाए मैं आज ये खाऊंगा बेटा क्या, ये नहीं लिस्ट बनाए कि मैं इनको ये भोग लगाऊंगा सात दिन। हर संडे को बना लें अगर आप खाली हो, या हर वेडनेसडे को, हाँ संडे टू संडे का मैं ये भोग लूं। और राधा रानी के लहंगे का भी देखें कितने सुंदर लग रही हैं राधा रानी। बच्चों को देखते हैं ना, पति का भी देखते हैं, पत्नी का भी देखते हैं, देखो देखो ना, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और शीशे में खड़े होकर देखते रहते हैं स्वयं को, अपना रूप माधुर्य का आस्वादन करते हैं। बताओ ये हड्डी मांस का शरीर एक मिलीमीटर इसको हटा दें, खून के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, एक मिलीमीटर सिर्फ। इसको निहार रहे हो, शरीर में शीशे में स्वयं को निहारना, ये स्वसुख वासना है कि कृष्ण राधा के प्रीति के लिए है। हम ये अपनी प्रत्येक गतिविधि चेष्टा विचार पे सावधानी बरतें। असली साधना है ही यही, असली भजन है ही ये कि प्रत्येक कार्य पे सावधानी बरतें। ये किसकी प्रीति के लिए है,